भक्त इस सभा में जो इस मंदिर से संबंधित कितने भक्त है इस सभा में जो इस मंदिर से संबंधित है, वैष्णो मंदिर में? हाथ उठाए, हाथ उठाए, कितने वैष्णो में आते
बाकी टूरिस्ट है सूरत से? बाकी टूरिस्ट है सूरत से?
बाकी सूरत से आए?
बाकी टूरिस्ट है सूरत से?
बाकी टूरिस्ट है?
नहीं, बाकी टूरिस्ट है सूरत से?
बाकी टूरिस्ट है सूरत से?
तो आज बहुत ही शुभ दिन है,
आज बहुत ही शुभ दिन है।
ओम ज्ञात वेदस्या ज्ञानंजना शक्या लक्ष्मीवदनेना तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं अव्यमेनं भूतले स्वयं भगवान् जय श्री कृष्ण चैतन्य जैसे आप जानते हो आज बहुत ही शुभ दिन है। क्यों है शुभ? अद्वैत आचार्य का जन्म है।
जैसे आप लोग जानते हो आज बहुत शुभ दिन है। क्यों है? क्योंकि आज अद्वैत आचार्य जी का आविर्भाव है
और हम संक्षेप में उनकी चर्चा करेंगे। फिर आगे श्रीमद भागवतम के 34 का 33 अध्याय का चर्चा करेंगे।
पहले अद्वैत आचार्य जी के बारे में चर्चा करेंगे, उसमें भागवतम के 34 अध्याय का
18वां श्लोक डिस्कस करेंगे। अद्वैत आचार्य कौन है?
अद्वैत आचार्य कौन है?
स्वयं महाविष्णु के रूप में भगवान है।
स्वयं महाविष्णु भगवान है।
भगवान प्रकट होने से पहले वो सनातन साधियों को पहले भेज देते हैं।
भगवान प्रकट होने से पहले अपने सनातन साथियों को पहले से भेज देते हैं।
जैसे भगवान किसी के प्रकट हो गए जब उससे पहले उनके बड़े भाई माता पिता प्रकट हो चुके थे।
जैसे भगवान कृष्ण प्रकट हुए उससे पहले उनके बड़े भाई उनके माता पिता प्रकट हो गए।
तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है।
चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है।
श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण यानिया राधा कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में।
राधा कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में
और नित्यानंद प्रभु उनके सनातन साथी है।
और नित्यानंद प्रभु उनके सनातन साथी है।
एक प्रार्थना है ठाकुर की जिसमें कहते हैं कि कृष्ण चैतन्य प्रभु है कौन हुए वो बिना किसी दयालु जो है संसार है सब अवसारों में आ सकते हैं दयालु।
एक प्रार्थना है कि सब अवतारों में चैतन्य महाप्रभु दयालु
अवतार है ठाकुर के द्वारा। आगे कहते हैं पति तो वहीं तो तब अवतारा मौसम प्रीत प्रभु यहाँ पर भी आ रहा है। आप अवतारित रहे हो पतितों का उद्धार करने के लिए।
आपका अवतार हुआ है पतितों का उद्धार करने के लिए।
आप मुझे निरंतर प्रेम में सूची कृपा का उद्धार कर रहे हैं। हमें बोल चुके इसे निरंतर जी आप सदा आनंद में हो।
तो नित्यानंद प्रभु जो है वो सदा आनंद में है।
नित्यानंद है नित्य मतलब सनातन आनंद में आपके भक्ति की अद्वैत आचार्य जो सीता के पति है।
आप कृपा कीजिए अद्वैत आचार्य जो सीता के पति है।
तो अद्वैत आचार्य प्रकट हुए थे भगवान चैतन्य महाप्रभु से 50 साल पहले।
अद्वैत आचार्य जी प्रकट हुए थे महाभू
के 50 साल पहले।
अद्वैत आचार्य जी आयु में बड़े है महाभू से।
तो महाप्रभु क्यों प्रकट हुए?
चैतन्य महाप्रभु क्यों प्रकट हुए?
पतितों
का उद्धार करने
के लिए। अद्वैताचार्य अद्वैता नाम क्यों है? क्योंकि उनके उनके ध्येय आत्मा में कोई अंतर नहीं है।
अद्वैत नाम क्यों है? क्योंकि उनके देह और आत्मा में कोई अंतर नहीं है।
आचार्य आचार्य मतलब जो कि अपने उदाहरण द्वारा समझते हैं।
और उनके नाम के पीछे आचार्य लगते हैं क्योंकि आचार्य अपने उदाहरण के द्वारा प्रचार करते हैं।
प्रैक्टिस वो रिपीट
शांतिपुर
गए हो
आप लोग? शांतिपुर कौन गए यहाँ से?
वहाँ एक मंदिर है, शिला है, इसकी उपासना देखा कि समाज की स्थिति बहुत बिगड़ गई है।
तो उन दोनों ने देखा कि समाज की स्थिति बहुत बिगड़ गई है,
लोग अधर्म का प्रचार कर रहे हैं,
अधर्म का प्रचार हो रहा है।
उन्होंने जब ये देखा तो भगवान से बहुत गहराई के साथ प्रार्थना की।
तो जब दोनों ने देखा तो उन्होंने भगवान से बहुत गहराई से प्रार्थना की। अद्वैत आचार्य
भगवान आप प्रकट हो, आपके अलावा कोई गहरा नहीं कर सकता।
तो अद्वैत आचार्य ने जब प्रार्थना की भगवान आप प्रकट हो, आप प्रकट होंगे तो ही ये अधर्म रुक सकता है।
ठाकुर आप जानते बड़े पवित्र भाव के थे।
अद्वैत आचार्य जी बहुत पवित्र भाव के थे
और तीन अखबार में जप करते थे,
तीन लाख नाम जप करते थे।
फिर उन्हें ब्रह्मा जी का अवतार माना जाता।
वैसे तो ब्रह्मा जी का अवतार माना जाता है।
तो चले लॉर्ड अपीयर माना प्रकट हो,
दोनों जन प्रार्थना करते आपको प्रकट होना चाहिए।
तो उसी दिन आपको प्रकट है उनके प्रार्थना के द्वारा।
तो उनकी प्रार्थना से चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए।
पत्नी का नाम क्या था?
सीता। अद्वैत आचार्य और उनकी पत्नी का नाम था सीता।
अद्वैत आचार्य को पता लगा कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है।
अद्वैत आचार्य जी को मालूम था चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है,
पर उनको पूरा आदर देते थे भगवान जैसे,
परंतु उनको पूरा आदर नहीं देते थे भगवान जैसे।
अद्वैत आचार्य है अद्वैत आचार्य ने पूरा आदर दिया और महाप्रभु क्या समझते थे अद्वैत आचार्य भगवान है।
अद्वैत आचार्य जी ने चैतन्य महाप्रभु को पूरा आदर दिया, लेकिन महाप्रभु जो है अद्वैत आचार्य को भगवान समझते थे,
बहुत आदर देते थे।
और महाप्रभु अद्वैत आचार्य को बहुत आदर देते थे।
और अद्वैत आचार्य वो सोचते थे ये परम भगवान है, तो महाप्रभु का गहरा स्नेह था।
लेकिन अद्वैत आचार्य वो महाप्रभु को भगवान समझते थे, दोनों का एक दूसरे के प्रति गहरा प्रेम था।
तो अद्वैत आचार्य ने सोचा कैसे मुझे महाप्रभु डांटे।
अद्वैत आचार्य चाहते थे कि कैसे महाप्रभु मुझे डांटे।
उन्होंने मायावादी सिद्धांत का प्रचार
तो अद्वैत आचार्य जी ने मायावादी सिद्धांत का प्रचार शुरू किया।
मायावादी मतलब जो सोचे कि भगवान निराकार है।
मायावादी मतलब जो सोचे कि भगवान निराकार है।
कई बार हम पूछते हैं मायावादी का क्या अर्थ, कह देंगे माया में है।
कई बार हम भक्तों से पूछते हैं कि मायावादी का क्या अर्थ, तो भक्त बताते हैं जो माया में है वो।
मायावादी माया में भी है पर उनका भगवान के रूप को नहीं स्वीकार करते।
तो मायावादी माया में भी है लेकिन वो भगवान के दिव्य रूप को स्वीकार नहीं करते।
तो अद्वैत आचार्य ने मायावादी सिद्धांत का प्रचार शुरू कर दिया।
तो अद्वैत आचार्य ने मायावादी सिद्धांत का प्रचार शुरू कर दिया।
और नित्यानंद ने सुना रघुचार्य चैतन्य महाप्रभु साथी हैं, वो मायावती इस सिद्धांत का प्रचार कर रहे हैं।
नित्यानंद मुनि ने जब सुना तो डांटा, अद्वैत आचार्य आप चैतन्य महाप्रभु के साथी हो और मायावाद का प्रचार कर रहे हो।
तो नित्यानंद ने देखा कि जो लोग कहते हैं कि सच है, अद्वैत आचार्य के भाव बदल रहे हैं।
तो उन्होंने देखा कि अद्वैत आचार्य के भाव बदल रहे हैं,
तो उन्होंने कहा तुमने सुना है कि अद्वैत आचार्य महाप्रभु बन गया?
नित्यानंद ने महाप्रभु को कहा आपने सुना है कि वो अद्वैत आचार्य मायावादी बन गया है?
और नित्यानंद ने कहा हाँ मैंने भी यही सुना था।
नित्यानंद ने कहा हाँ मैंने भी यही सुना है।
तो महाप्रभु ने बड़े जोर से और प्यार से अद्वैत आचार्य को
महाप्रभु ने बहुत जोर से और साथ में प्रेम से अद्वैत आचार्य को मारा
और अद्वैत आचार्य का थैंक यू इज व्हाट आई वांटेड।
तो अद्वैत आचार्य खुश हुए और कहने लगे थैंक यू
इज व्हाट आई वांटेड,
यही मैं चाहता था।
आप मुझे इतना आदर देते हो, आप स्वयं भगवान हो, मैं चाहता था आप मुझे डांटो।
अद्वैत आचार्य ने कहा मैं यही चाहता था कि आप मुझे डांटो क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं।
उनके गुरु थे महादेवपुरी, बहुत ही ऊंची कुटी के भक्त है।
अद्वैत आचार्य के जो गुरु थे उनका नाम है माधवेंद्रपुरी और माधवेंद्रपुरी जी बहुत ऊंची कोटि के भक्त थे।
वो 24 घंटे भगवान के नामों का उच्चारण करते थे।
माधवेंद्रपुरी जी 24 घंटे भगवान के नामों का उच्चारण करते थे
और खाते थे उन्होंने कोई खाने को दे
और खाते थे तभी जब उनको कोई खाने को दे,
नहीं तो भूखा रहते थे
वरना उपवास करते थे भूखा रहते थे।
माधवेंद्रपुरी बड़े प्रसिद्ध आचार्य थे।
माधवेंद्रपुरी जी बड़े प्रसिद्ध आचार्य थे।
एक दिन भगवान ने उन्हें सपने में कहा माधवेंद्रपुरी मेरी स्थापना यहाँ हुई है हुई थी पुजारी ने दबा लिया है तो मैं वहाँ से उठाओ और स्थापना करो।
एक बार भगवान को सपना आया, माधवेंद्रपुरी जी को सपना आया और भगवान ने कहा सपने में कि मुझे यहाँ स्थापना की है, पुजारी छोड़ के चला गया है, आप मुझे वहाँ से बाहर निकाल के मेरी स्थापना कीजिए।
उस दिन में मुसलमानों का राज्य था।
उस समय मुसलमानों का राज्य था
और मुसलमान थे, उन्होंने अनेक प्रसिद्ध मंदिर तोड़े थे इत्यादि।
और मुसलमानों ने अनेक प्रसिद्ध मंदिर तोड़ दिए
तो कहीं पुजारी थे मूर्ति बनाकर जयपुर चले गए, कहीं उन्हें छुपा दिया किसी के नीचे।
तो कई पुजारियों ने कुछ मूर्तियों को जयपुर ले गए और कईयों को कुछ मूर्तियों को जमीन के नीचे छुपा दिया।
इसलिए जयपुर को गुप्त वृंदावन कहा जाता है
और इसलिए जयपुर के अंदर गुप्त वृंदावन कहा जाता है उसको।
तो गोपाल विग्रह की स्थापना की। तो उन्होंने फिर गोपाल विग्रह की स्थापना की।
भगवान
ने आने के सपने में कहा माधवेंद्रपुरी मैं प्रसन्न हूँ कि तुमने मेरी स्थापना की है, मुझे अभी भी गर्मी लग रही है।
तो माधवेंद्रपुरी को फिर भगवान सपने में आए स्थापना के बाद और कहा कि मुझे अभी भी गर्मी लगी है तो कुछ आदेश दिया
मुझे चंदन लेकर आओ मेरे
कि मेरे लिए चंदन लेके आओ।
उन्होंने माधवेंद्रपुरी ने जो बंगाली पुजारी को शिक्षा दी वो चले
चंदन
लेने गए।
तो माधवेंद्रपुरी जी ने भगवान की सेवा दो गौड़ीय पुजारी को दीक्षा दे के सौंपा और वो चले चंदन लेने।
पूरी यात्रा उन्होंने पैदल की
माधवेंद्रपुरी जी बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं।
अभी मैं जाए वाले मैंने देख शांतिपुर में और वहाँ जाए बड़े प्रभावित हुए थे उन्होंने माधवेंद्रपुरी के दीक्षा ली
और रस्ते में शांतिपुर में माधवेंद्रपुरी अद्वैत आचार्य जी से मिले थे और अद्वैत आचार्य जी ने माधवेंद्रपुरी से बड़े भाव से दीक्षा ली।
महाप्रभु
के साथी है अद्वैत सनातन साथी है अद्वैत
आचार्य का
तो आज अद्वैत आचार्य जी का भी भाव दी थी
बर्थडे
है बर्थडे है
हाँ। बोले केक बनाना चाहिए।
आज अद्वैत आचार्य जी का बर्थडे केक बनाना चाहिए।
हेलो बॉम्बे देरे मंदिरों में आपके मंदिर केक बनाते हैं।
हम बॉम्बे दिल्ली मंदिरों में सब आचार्य के ऐसे आविर्भाव के दिन बर्थडे केक बनाते हैं।
हमें अभी ले जाए थे बात अलग से क्या कि बॉम्बे के बाद भगवान भगवान के
हमें अद्वैत आचार्य जी से प्रार्थना करना चाहिए आज के वो हमें कृपा करें ताकि हम भगवान के शरणागत हो सके।
और भगवान के माता पिता के भी गुरु थे।
अद्वैत आचार्य भगवान के माता पिता के भी गुरु थे।
हम भगवान पैर प्रकट हुए थे अपने माँ के स्तन से दूध नहीं पी रहे थे।
जब भगवान प्रकट हुए तो अपने माँ के स्तन से दूध नहीं पी
रहे थे। तो अद्वैत ने कहा इसे नहीं पी रहे क्योंकि तुमने दीक्षा नहीं ली।
इसलिए नहीं पी रहे क्योंकि इन्होंने दीक्षा नहीं लिया।
उनकी माँ ने दीक्षा लिया उनके पति ने दोनों भाई अमीर चाहे कुछ कुछ
और फिर उनके माता पिता ने दीक्षा लिया अद्वैत आचार्य
जी से। चाहे कि कई प्रसिद्ध भक्त थे एक थे वासुदेव दत्त।
अद्वैत कई सारे भक्त थे उसमें एक प्रसिद्ध थे वासुदेव दत्त।
अद्वैत आचार्य के अनेक प्रसिद्ध भक्त थे एक थे वासुदेव दत्त।
अद्वैत आचार्य जी के अनेक भक्त थे उसमें से एक थे वासुदेव दत्त।
तो वो है महाविष्णु के अवतार और अद्वैत आचार्य ने मैं भक्ति का संदेश दिया।
वो है महाविष्णु के अवतार और उन्होंने हमें भक्ति का संदेश दिया।
तो हम भागवतम का एक श्लोक पढ़ेंगे ठीक है।
अभी हम भागवतम का एक श्लोक पढ़ेंगे।
आपके पास स्मार्टफोन किसके पास है? कितने भक्तों के पास स्मार्टफोन में पापा के जाते हैं? कितने भक्तों ने अपने स्मार्टफोन में पापा के ज्ञात हो?
कितने भक्तों ने स्मार्टफोन
में वो क्या जो 13 क्या हो गए? हिंदी में पढ़ दो। हम हिंदी में पढ़ेंगे
अरे
कृष्ण ठीक है। श्रीमद भागवतम में इस बार हमें शिक्षा प्राप्त हो गई।
श्रीमद भागवतम से हमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त होती है।
और चौथे स्कंद में आप प्रचेतास की कथा सुनते हो।
और चौथे स्कंद में आप प्रचेतास की कथा सुनते हो।
प्रचेतास जो थे महाराज पृथ्वी ने परेश्वर के पुत्र थे।
प्रचेतास जो थे महाराज प्राचीन मणि के पुत्र थे।
राजा थे योगी कर्म में कार्य में रुचि लेते थे।
वो राजा थे
तो कुछ करते हैं हिंदी में बोलो
अनुवादन तात्पर्य होते
हाँ ध्यान से सुनिए।
4.30.8 रचेताओं के कार्यकलाप अनुवादन तात्पर्य वाइस डिवाइन ग्रेस से भक्ति विधान स्वामी श्री गोपाल की। श्री भगवान ने कहा हे राजपू मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम सभी एक ही कार्य भक्ति में लगे हो। मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। अब तुम जो वर चाहो मांग सकते हो। तात्पर्य, क्योंकि राजा प्राचीन बहिष्ठ के पुत्र मिलकर कृष्ण भक्ति कर रहे थे, अतः भगवान उनसे अत्यधिक प्रसन्न थे। राजा प्राचीन बहिष्ठ के सभी पुत्र पृथक पृथक जीव थे, किंतु भगवान की भक्ति करने में वे सभी एक थे। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीवों में एकता का प्रयास वास्तविक एकता है। भौतिक जगत में ऐसी एकता संभव नहीं है। भले ही आधिकारिक रूप से लोग एक मत हो ले, किंतु उनके अलग अलग स्वार्थ होते हैं। उदाहरण के तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी राष्ट्रों की अपनी अपनी आकांक्षाएं होती हैं, अतः उन्हें एक मत नहीं किया जा सकता। इस संसार में जीवों के बीच विविधता इतनी प्रबल है कि कृष्ण भावना मूल संघ में भी कभी कभी भिन्न मतों एवं विचारों के कारण सदस्यों में विरोध पाया जाता है। वस्तुतः कृष्ण भक्ति में द्वेष नहीं रह सकता। वहां एकमात्र उद्देश्य है यथाशक्ति श्री कृष्ण की सेवा करना। यदि सेवा को लेकर कोई मतभेद होता है तो उसे आध्यात्मिक समझना चाहिए। जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, वे किसी भी परिस्थिति में विलग नहीं हो सकते। इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को कोई भी वर प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं। हम देख सकते हैं कि भगवान राजा प्राचीन महिषत के सभी पुत्रों को वर देने के लिए तुरंत भगवान तैयार हो जाते हैं। हरे कृष्ण।
हमने अभी श्लोक पहले सुना था, अनुवाद दोहराई है।
तो उसका अनुवाद हम फिर से दोहराते हैं।
आप दोहराई है इनके बाद।
श्री भगवान ने कहा,
श्री भगवान ने कहा,
सब लोग बोले पीछे, श्री भगवान ने कहा,
श्री भगवान ने कहा,
हे राजकू,
हे राजकू,
मैं तुम लोगों के परस्पर
मित्रतापूर्ण
संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम सभी
एक ही
कार्य भक्ति में
लगे हो।
मैं तुम लोगों की
मित्रता से
इतना अधिक प्रसन्न हूँ
कि मैं
तुम्हारा
कल्याण चाहता हूँ।
अब तुम जो वर चाहो मांग सकते हो।
जैसे मैं कह रहा था, जो राजा देव का नाम था प्राचीन
बहिष्ठ,
उनके दस बेटे थे और उन्हें मेरे भक्त हैं वो गहरी तपस्या की थी
और उन्होंने सबने मिलके बहुत तपस्या की थी।
10,000 सालों के लिए पानी में रहकर हमारा चिंतन कर रहे थे।
उन्होंने 10,000 सालों तक पानी में रहकर भगवान का चिंतन किया था।
तो भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम तपस्या करते हैं।
परम भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम तपस्या करते हैं।
तपस्या बिना ये जीवन अधूरा है।
तपस्या के बिना ये जीवन अधूरा है।
कई धर्म प्रचारक है, बड़ा बड़ा उपदेश देंगे, तपस्या की चर्चा नहीं करें।
ऐसे कई धर्म प्रचारक है जो बड़ा बड़ा उपदेश देंगे लेकिन तपस्या की चर्चा नहीं करेंगे।
तो उन्होंने तपस्या की थी, इसी कारण भगवान प्रसन्न हो।
तो प्राचीन भाई के 10 पुत्रों ने तपस्या की थी इसलिए भगवान प्रसन्न हो गए।
तो भगवान को प्रसन्न करना है तो हमें तपस्या करनी चाहिए।
तो भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो हमें तपस्या करनी
चाहिए। तपस्या का यह घर छोड़कर जंगल हो जाओ, कुछ अर्थ है आप कार्य से बचो।
तपस्या का यह अर्थ नहीं है कि आप घर छोड़ बार दो, लेकिन भौतिक इंद्रियों की जो भोग है उसे बचो।
भगवान कह रहे हैं मैं तुम सब भाइयों के सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ।
भगवान ने कहा मैं आप दसों भाइयों की सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ।
इसका मेघ प्रशंसा है अलग अलग भक्त उपस्थित है।
इस्कॉन भी एक संस्था है जिसमें अलग अलग भक्त उपस्थित है
और कई बार अलग विचार भी होता है
और कई बार भक्तों का अलग अलग विचार भी होता है।
हमारा भाव क्या है वो एक सरेसा हमारी सेवा कर रहे हैं
लेकिन हमारा भाव यह रहना चाहिए कि एक साथ मिलकर भगवान की सेवा करें।
सदा मित्रता का भाव होना चाहिए
सदा मित्रता का भाव होना चाहिए।
अगर प्रभु जी उदाहरण दे देते हैं इंग्लिश में कहावत है यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल।
प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते थे यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल।
अरे सुना है पहले
आप लोगों ने कहा सुना है प्रभुपाद बताते थे
वेरी फेमस
यह बहुत ही प्रसिद्ध वर्ष है।
तो एक साथ एक साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए
हम सबको एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
आध्यात्मिक जीवन में नम्रता बहुत महत्वपूर्ण है।
आध्यात्मिक जीवन में नम्रता बहुत महत्वपूर्ण है।
आप शास्त्र में हरिनाम की महिमा के विषय में पढ़ते हो
आप शास्त्र में हरिनाम की महिमा के विषय में पढ़ते हो
चैतन्य महाप्रभु ने हमें केवल 8 श्लोक दिए शास्त्र के नाम से जानते हैं।
चैतन्य महाप्रभु ने हमें केवल 8 श्लोक दिए है इसको हम शिष्टाचार के नाम से जानते हैं।
और पहले श्लोक में वो कहते हैं कि हरिनाम का लाभ क्या है।
पहले श्लोक में भगवान कहते हैं हरिनाम का क्या लाभ है।
जैसे हमने सुना चेतन दर्पण मार्ग लेना
जैसे आपने सुना चेतन दर्पण मार्ग
लेना हरिनाम के उच्चारण से जैसे कि मैल दूर हो गई।
हरिनाम के उच्चारण से हमारा मैल दूर होता है।
हम सबके हृदय में काम क्रोध मोह मद मत्सर्य का प्रभाव है।
हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य का प्रभाव है
तो मैल को दूर करना यह उपाय है।
अगर मैल दूर करना है तो हरिनाम उपाय है।
तो आगे कहते हैं हरिनाम के उच्चारण से असली आनंद भी प्राप्त करना।
आगे कहते हैं कि हरिनाम के उच्चारण से असली आनंद भी प्राप्त होता है।
वो कहते हैं आनंद की पूरी शक्ति डाली है नामों में।
वो कहते हैं कि आपने पूरी शक्ति डाल दी अपने नामों में
पर हमारी समस्या क्या है हमारी इतनी रुचि नहीं है
लेकिन हमारी समस्या यह है कि हमारी हरिनाम के उच्चारण में रुचि नहीं है।
रूपा गोस्वामी कहते हैं भगवान के नाम में है चीनी जैसे मीठे हैं।
रूप गोस्वामी जी बताते हैं भगवान के नाम जो चीनी जैसे मीठे
हैं उनकी लीलाएं है वो भी मीठी है
उनकी लीलाएं भी मीठी है
पर हमें ये महसूस नहीं हो रहा।
लेकिन हमको ये महसूस नहीं हो रहा है
क्यों
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 क्यों नहीं हो रहा है।
कौन उत्तर देगा
इसमें से।
हाँ अविद्या की बीमारी है
क्योंकि हमें अविद्या की बीमारी है।
ये सच बात है
ये सच बात है
क्योंकि कल्पना तो नहीं अविद्या की बीमारी है। अगर हम जाप करेंगे तो अविद्या की बीमारी दूर हो जाएगी।
लेकिन अगर हम जप करेंगे तो एक अविद्या की बीमारी दूर हो जाएंगी।
चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आगे लाल बिसरी चेना सुगा बिसरी हमारी ने मन लेना कृष्ण ने सहारी हर वक्त जो जुड़ता है भक्ति में उसका भाव ही रहता है कि मैं हरि नाम का निरंतर जप करूँ।
जो भक्त जुड़ता है उसका भाव होता है कि मैं हरि नाम का निरंतर जप करूँ।
आप बीमार हो तो क्या चाहते हो बीमारी बुखार जल्दी चले जाए।
आप लोग अगर बीमार हो तो आप लोग क्या चाहते हैं कि बीमारी जल्दी दूर हो जाए या नहीं।
आप अगर व्यापार करते हो आप चाहते हो नफा बनाए।
जैसे आप व्यापार करते हो तो आप चाहते हो कि आप नफा बनाए।
बाय हुक और क्रूक
बाय हुक और बाय क्रूक
ये प्रोसेस लोग फेल है यही बात है। हुक और क्रूक हमने ये धन कमाना है
तो ये बहुत प्रसिद्ध है अंग्रेजी भाषा में कि कैसे भी करके हमको धन कमाना है।
अगर आपका भाव है ऐसा भगवान का नाम को उच्चारण कर ये श्लोक का संदेश हमें स्मरण करना चाहिए।
और अगर आपका भाव है कि आप निरंतर भगवान का नाम का उच्चारण करो तो हमें इस श्लोक के संदेश को आत्मसात करना
पड़ेगा।
पहले प्रभुपाद जी फार्मास्यूटिकल के बिजनेस में थे,
तो उन्होंने अलाहाबाद में एक ड्रग टॉनिक बनाया था।
तो अलाहाबाद में उन्होंने एक ड्रग टॉनिक बनाया था।
ये गुरु भाई आए थे उनकी दुकान में,
तो उनकी दुकान पे उनके गुरु भाई आए,
तो बोले हमें नया टॉनिक बनाया है शक्ति के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए।
आपने उनके गुरु भाई ने प्रभुपाद जी को बताया कि आपने दुकान बनाया है सब चीज प्राप्त करने के लिए, टॉनिक टॉनिक बनाया है, टॉनिक बनाया।
उनके गुरु भाई ने कहा अरे बाबू ये भगवत प्रेम कहते।
तो उनके गुरु भाई ने कहा अभय बाबू मुझे ऐसा टॉनिक दो जिससे मुझे भगवत प्रेम प्राप्त हो।
तो पापा ने बड़ी विनम्रता से कहा फॉर्मूला मुझे पता है पर दवाई तैयार नहीं हुई है।
प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि फॉर्मूला मुझे मालूम है लेकिन वो दवाई अभी तैयार नहीं हुई
है। पूछा क्या है फॉर्मूला?
तो जब उनके मित्र ने पूछा प्रभुपाद जी को क्या है वो फॉर्मूला, तो प्रभुपाद जी ने त्रिणाद अभि सुनी चीन का श्लोक कहकर
सुनाया। भगवान जी गुरु कृष्ण प्राप्त होता है।
चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अनेक जन्मों के बाद हमें भक्ति लता बीज प्राप्त होता है।
बीज तो प्राप्त हो गया, हमने गीता पढ़ लिया, बीज को उगेगा कैसे?
बीज तो हमने प्राप्त कर लिया सबने, लेकिन ये बीज उगेगा कैसे?
कैसे उगेगा?
कैसे उगेगा? कौन जवाब देगा?
कब उगेगा?
कब उगेगा? यस माता जी बताइए। श्रवण और कीर्तन
जब आप उनसे पानी पिलाओगे,
जब आप उनको पानी पिलाएंगे,
तुलना की जाती है कीर्तन
और पानी पिलाने की तुलना श्रवण और कीर्तन से की जाती है।
तो ये भक्ति का नष्ट भी हो सकता है।
अरे भक्ति का सुंदर बगीचा नष्ट भी हो सकता है।
कैसे?
कैसे नष्ट होगा?
पागल हाथी को अंदर छोड़
दिया, बगीचे के अंदर अगर पागल हाथी को छोड़ दिया जाए
तो भक्ति का भी भक्ति का बगीचा सुंदर है पर नष्ट हो सकती है, ऐसा अपराध के लिए।
तो भक्ति का बगीचा बहुत सुंदर है लेकिन यह नष्ट हो सकता है वैष्णव अपराध के कारण।
तो शास्त्र में अपराधों से बचने के विषय में एक एक श्लोकों में संदेश मिलता है।
तो शास्त्र के अंदर वैष्णव अपराध बचने के बचने से अनेक सारे श्लोकों से हमें उपदेश प्राप्त होता है।
हमने कुछ समय पहले आचार्य की चर्चा कर रहे थे,
कुछ समय पहले हम अपने अद्वैत आचार्य जी की चर्चा कर रहे थे।
तो अद्वैत आचार्य जो थे उनके प्रति सची माता का थोड़ा क्रोध था।
तो अद्वैत आचार्य के प्रति सची माता का थोड़ा क्रोध था।
ये माता सोच रही थी मेरा बड़ा बेटा विष्णु घर छोड़कर चला गया और अभी थोड़ा बेटा भी गुस्सा हो जा रहा है।
तो सची माता सोचती थी हमेशा कि मेरा बड़ा बेटा विष्णु घर छोड़ के चला गया और अब दूसरा बेटा भी उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहा है।
ये सब है अद्वैत आचार्य के कारण।
तो माता हमेशा सोचती थी कि ये सब कुछ हो रहा है अद्वैत आचार्य के उपदेश के कारण।
उनकी माँ के हृदय में थोड़ा क्रोध था भगवान के प्रति, अद्वैत आचार्य के प्रति।
तो सची माता के हृदय में थोड़ा सा क्रोध था अद्वैत आचार्य के प्रति।
कई बार बात कह रहे थे फिर माँ को भी आप सब पर दया बरस रहे हो, अभी माता पर दया क्यों नहीं बरस रहे?
तो सभी भक्त कहते थे चैतन्य महाप्रभु जी भगवान आप सभी के ऊपर दया प्रकट करते हो लेकिन आपकी माँ के ऊपर क्यों उपकार नहीं करते हो?
ये महाप्रभु जी खुले रूप से उपदेश दिया, ये नहीं देखा कौन योग्य है कौन नहीं है।
तो चैतन्य महाप्रभु ने खुले रूप से उपदेश दिया।
इस प्रकार वर्षा आती है पत्थर पर भी आती है सागर में भी पृथ्वी पर भी।
जिस प्रकार से वर्षा आती है तो वो सागर में भी पानी बरसाता है पत्थर में भी बरसाता है और जमीन पे भी बरसाता है।
इसी प्रकार महाप्रभु ने भेदभाव ऐसा कोई नहीं।
तो महाप्रभु ने भी इस कोई भेदभाव नहीं रखा।
तो बोल कह रहे हैं अभी माँ को भी दया करो।
तो सभी भक्त इसलिए कहते हैं कि आप भी अपनी माँ के ऊपर भी दया कीजिए।
भक्त कहते थे माँ के ऊपर दया कीजिए।
भक्त कहते थे आप अपनी माँ के ऊपर दया कीजिए।
तो भगवान ने कहा उसे अपराध किया है ये अपराध है जब अमर प्रेम प्राप्त हुआ।
तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया भक्तों को कि मेरी माँ ने अपराध किया है और अपराध से जब बचेंगे तभी भगवत प्रेम प्राप्त होगा।
क्या था अपराध?
वो अपराध क्या था? माँ ने
जो डबल प्रश्न आदि काम किया।
तो सच्ची माता के अंदर जो अद्वैत आचार्य के प्रति क्रोध था कि डबल पर्सनालिटी का आदमी है,
कहता कुछ करता कुछ।
अरे कहता कुछ है अद्वैत आचार्य और करता कुछ है।
एक दिन भगवान ने अपना दिव्य रूप पकड़ दिया था और मेरे चेहरा प्रणाम कर रहे थे।
एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया था और अद्वैत आचार्य महाप्रभु को प्रणाम कर रहे थे।
उनकी माँ ने देखा देखा तो बड़े प्रसन्न है। हमें माँ अपराध के परिणाम से बचेगी।
तो जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा अपनी माँ को धूल लेते हुए तो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि अब मेरी माँ वैष्णव अपराध से मुक्त हो गए।
अपराध कई किस्म के होते हैं।
तो अपराध जो है वो कई प्रकार के होते हैं।
हरिनाम के प्रति अपराध,
हरिनाम के प्रति अपराध।
आप हर मंदिर में दस नाम अपराध सुनते हो?
हर मंदिर में हम दस नाम अपराध का हरोज उच्चारण सुनते हैं।
ये दस नाम अपराध केवल नए भक्तों के लिए नहीं है, नए अपराध सबके लिए है।
तो दस नाम अपराध
शत्रु है। तो ईश्वर से कैसे बचोगे?
तो आप ईर्ष्या से कैसे बचोगे? मायावादी सारंग भट्टाचार्य को बदल दिया था और एक वैष्णव भक्त बना
दिया था। एक बेटी थी पति का नाम था मोगा।
महाप्रभु के पति क्रोध था।
ये नहीं समझे महाप्रभु कौन है।
वो नहीं समझ पाया कि महाप्रभु कौन है।
तो एक समय महाप्रभु को निमंत्रण दिया था उषार के लिए।
एक समय सावम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया था प्रसाद के लिए।
महाप्रभु के भक्त है वो मुरारी ने भंडारा महाप्रभु केवल थोड़ा ही खाते थे।
तो महाप्रभु के भक्त जो है वो बहुत महाप्रभु को ऑफर करते थे लेकिन महाप्रभु थोड़ा ही खाते थे।
तो क्या हुआ एक दिन तो रिटायर अभी पति का सहयोग लेंगे ऐसे और वो मेरे खाते देख लिया अंदर क्या क्या है भगवान की प्लेट में।
तो एक बार साहब भट्टाचार्य के घर में देख लिया कि भगवान के प्लेट में क्या क्या है, क्या क्या रसोई बनाई है वो देख रहा था। वो सब चैतन्य महाप्रभु जो ऑफर कर रहे
थे हमारा भंडारा देखा कहने देखो संन्यास लिया है खाते लिया।
तो अमोक ने ऐसा कमेंट किया कि देखो ये संन्यास लिया है लेकिन कितना खाते हैं, गृहस्थ से भी ज्यादा खाते हैं इतना सारा वो मैंने जब देखा।
किसी अमोगा को कोल की बीमारी हो गई।
इस अपराध के कारण अमोगा को कोल की बीमारी हो गई
और महाप्रभु उसे देखने गए
और महाप्रभु अमोघा को देखने गए।
महाप्रभु बैठाया, हमारा प्रिय भक्त बन गया था,
क्योंकि महाप्रभु साहू भट्टाचार्य जो उनके बहुत प्रिय भक्त बन गए
और महाप्रभु चाहते नहीं थे वो शोक में आए,
और महाप्रभु चाहते थे वो
नहीं चाहते थे
शोक में आए साहू भट्टाचार्य।
मैं हाँ थोड़ा ये इच्छा थी पर जब तक ईश्वर द्वेष रहेगा भगवत प्रेम नहीं प्राप्त होगा।
तो जब तक हृदय के अंदर द्वेष रहेगा तब तक भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होगा।
तो समाज में ईश्वर द्वेष बहुत कॉमन है,
तो भौतिक समाज में ईर्ष्या और द्वेष बहुत ही कॉमन है।
सच बात है,
सच बात है,
ईश्वर द्वेष बड़ा कॉमन है, जीवन में ये शत्रु है,
आध्यात्मिक जीवन में ये शत्रु है, ईर्ष्या द्वेष हमारे
ईर्ष्या द्वेष से बचने का प्रयास करना चाहिए।
तो सभी भक्तों को ईर्ष्या और द्वेष से बचने का प्रयास करना चाहिए।
अपराध शुरू होते हैं एक लेवल पर, अगर हम ध्यान दे रहे हैं बढ़ते जाता है।
अपराध होता है शुरू में, अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाए तो वो अपराध बढ़ता रहता है।
तो कहते थे वी शुड बी लाइक अ बी एंड नॉट अ फ्लाई।
तो बाबा जी कहते थे
वी शुड लाइक अ
बी नॉट अ फ्लाई।
क्या अंतर है मधुमक्खी और मक्खी में?
तो क्या अंतर है मधुमक्खी और मक्खी के अंदर, दोनों में क्या अंतर है?
एक गंदे स्थान में रहना पसंद करती है और दूसरा साफ स्थान में।
तो जो मक्खी होती है वो गंदे स्थानों में रहना पसंद करती है और मधुमक्खी साफ स्थानों में।
तो और कहते हैं वी शुड बी लाइक अ बी एंड नॉट अ फ्लाई।
प्रभुपाद जी कहते थे हमें मधुमक्खी की तरह होना चाहिए, मक्खी की तरह नहीं।
अगर आप हर व्यक्ति के गुणों को देखोगे तो मित्रता का भाव बढ़ेगा।
तो हम अगर दूसरे भक्तों के गुणों को देखेंगे तो मित्रता का भाव बढ़ेगा।
अगर हम थोड़ा ईश्वर रखेंगे तो शत्रु भाव बढ़ेगा,
और अगर भक्तों के प्रति ईर्ष्या का भाव रखेंगे तो हमारे अंदर शत्रुता का भाव बढ़ेगा।
अलग अलग मतलब भी अलग विचार हो सकते हैं, पर अंत में हमें वो करना चाहिए भक्ति के लिए अनुकूल है और प्रतिकूल है उसे बचना चाहिए।
तो इस्कॉन संस्था में भक्तों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन अंत में हमें वही करना चाहिए जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है और अनुकूल है, और प्रतिकूल को हमें उसको ठुकरा देना चाहिए।
जैसे महाप्रभु शिक्षा दे रहे थे कैसे होगा,
तो चैतन्य महाप्रभु एक बार सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे कि भगवान को कैसे शरणागत हुआ।
क्या कहा? स्वीकार करो या प्रतिकूल है वो त्याग करो।
तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा जो अनुकूल है भक्ति के लिए वो स्वीकार करो, प्रतिकूल है उसको त्याग
करो।
तो हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम सब एकता के साथ आगे बढ़े।
दल नहीं बनाना,
अलग अलग दल नहीं बनाना है, तो हमें सबको प्रयास करना है संस्थान के प्रचार में बढ़े आगे।
आजकल इसको एक फ्रेज आई है कम्फर्ट जोन,
आजकल ये फ्रेज है इस्कॉन के
सेवा करेंगे हमारे सर पर,
आप सेवा करेंगे लेकिन सर पे
हमारे तो मक्ति का पालन होता है, जिसका भाव से शुद्ध भक्ति का बढ़ती है।
निष्ठा भाव से शुद्ध भक्ति का पालन होता है।
आप सब अच्छे भाग्यशाली हो, आप इस्कॉन के साथ जुड़े हो।
आप सब बहुत भाग्यशाली हो कि आप सब इस्कॉन के साथ जुड़े हो।
क्यों
क्यों क्यों क्यों आप भाग्यशाली हैं?
आप इस्कॉन में आपको संदेश मिल रहा है,
इस्कॉन के अंदर आपको सही संदेश प्राप्त होता है।
नकली बनावटी संदेश नहीं,
नकली बनावटी संदेश नहीं।
तो बाबा जी ने एक पत्र में लिखा था कि जब तक किसी के बड़े ऊंचे संस्कार नहीं हो वो कृष्ण भक्ति में नहीं आएगा।
बाबा जी ने एक बार पत्र लिखा था कि जब तक किसी के ऊंचे संस्कार नहीं होते तब तक वह कृष्ण भक्ति में नहीं आ सकता।
इस कारण जो हम जुड़ रहे हैं और वो अच्छे संस्कार है,
तो इस कॉल में जो भी भक्त जुड़ रहे हैं उन सभी के अच्छे संस्कार है।
और बाबा जी के पास है सुंदर मंदिर है हर जगह,
आज प्रभुपाद जी की कृपा से हर जगह पे मंदिर है।
एक समय हम सूरत में आए थे, बाबा भी सूरत में आए थे, पर 1975 में मैं आया था ऐसा बड़ी रहना गया और शहर एक झोपड़ी भी नहीं था।
प्रभुपाद जी भी सूरत शहर में आए थे और महाराज जी कहते 1975 में वो भी आए थे जसोमती नंद प्रभु के साथ, तो उस समय सूरत में एक भी भक्त नहीं था।
जब प्रभुपाद आए थे सूरत लगभग 50 बजे थी, पूरे शहर में क्रांति हो गई थी।
प्रभुपाद जी आए थे सूरत में तो विदेशी भक्तों के साथ प्रचार के द्वारा तो पूरे शहर में क्रांति हो गई थी।
उसका लाभ हम आज भी उठा रहे हैं,
तो उसका लाभ आज भी हम उठा रहे हैं।
जो बीज प्रभुपाद जी सोया था सूरत में,
तो जो बीज प्रभुपाद जी ने सूरत में छोड़ा था उसका लाभ आज हम उठा रहे हैं।
तो आज लगभग 400 केंद्र है, भगवद गीता का विसर्जन हुआ है, 60 करोड़ कॉपी पिछले 50 सालों में अनेक भाषाओं में।
400 केंद्र
आज इस्कॉन के 400 केंद्र है,
पिछले 50 सालों में
60 करोड़ भगवद गीता बांटी गई है। हरि बोल।
400 करोड़ विनती है, मैंने आपको ध्यान दीजिएगा, हमको जितने ध्यान से करते उतना जल्दी लाभ मिलेगा।
शास्त्र कहते हैं जितना हरि नाम के ऊपर ध्यान पूर्वक जप करोगे हरि नाम का तो जल्दी प्रगति होगी।
सारे गीता को पढ़ो
और साथ में भगवद गीता को पढ़ो,
भागवतम को पढ़ो,
श्रीमद भागवतम को पढ़ो,
हमेशा ऋषि पर बल देते हैं गणेश करो तो साथ में इनको पढ़ना भी चाहिए।
हमें पुस्तकों का वितरण करना है लेकिन साथ में इसको पढ़ना भी चाहिए।
केवल वितरण करना हमारा कर्तव्य नहीं है,
केवल वितरण करना हमारा कर्तव्य नहीं है,
पढ़ना भी कर्तव्य है,
तो उसको पढ़ना भी चाहिए
और प्रयास करो नम्रता के भाव को अनुकूल करने के लिए,
और प्रयास करो कि नम्रता के भाव को अनुकूल करने के लिए।
फिलहाल पेट से भी ज्यादा शरीर, घास से भी ज्यादा पतित,
हमें पेट से भी ज्यादा सहनशील और घास से भी ज्यादा पतित बनना है।
सबको आदर दो, मेरा गिरी आदर की उम्मीद रखे,
सभी को आदर दीजिए और बिना किसी आदर की अपेक्षा की।
इस प्रकार मित्रता का भाव बढ़ेगा और आपके हमारी कृपा प्राप्त होगी।
इस प्रकार से मित्रता का भाव भक्तों में बढ़ेगा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी।
आप लोग की योजना है यहाँ अच्छा मंदिर बनाना,
आप सबकी योजना है यहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर बनाना, ये सच बात है, आपको मंदिर बनाना है यहाँ पे।
भक्त जिनकी इच्छा है
आप ऐसे कितनी कितने की इच्छा है कि भक्त मंदिर बनाना है आप भव्य है,
तो मंदिर बनाने के लिए भगवान की कृपा चाहिए,
मंदिर बनाने के लिए भगवान की कृपा चाहिए,
ठीक है ना?
ठीक है,
घास का पत्ता भी नहीं हिलता भगवान की,
घास का पत्ता भी नहीं हिलता भगवान की इच्छा के बिना।
तो बाबा जी कितने मार्ग मुझे है जब गोस्वामी को भेजा उन्होंने 3 जिम्मेदारियां दी,
तो जब चैतन्य महाप्रभु ने गोस्वामी को वृंदावन भेजा तो बहुत जिम्मेदारियां दी,
तीन
जिम्मेदारी।
एक थी ग्रंथों की रचना करना,
पहली जिम्मेदारी ग्रंथों की रचना करना,
उन सारों को खोजना लीला प्रकट की थी,
और दूसरा उन स्थानों को खोजना जहाँ पे भगवान ने अपनी लीला की थी,
और मंदिरों का निर्माण,
और तीसरा मंदिरों का निर्माण।
तो आप सब एक के साथ चलोगे तो मंदिर की योजना जल्दी आरम्भ हो गई।
अगर आप सब एक साथ आगे बढ़ेंगे तो मंदिर की योजना जल्दी शुरू हो जाएगी।
ये आवश्यक है हम एक साथ कार्य करें,
ये बहुत आवश्यक है हम एक साथ कार्य करें
हर जगह,
हर जगह।
हम ये कह रहे हैं हर हर कम्युनिटी में, हर सभा में, हर मंदिर में,
हर कम्युनिटी, हर सभा में, हर मंदिर में।
हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण।
महाराज
जी ने थोड़ा समय छोड़ा है, आपको कोई प्रश्न है तो हाथ उठा के प्रश्न पूछ सकते।
कोई शंका है? कोई
शंका?
मैं आपके मदर में आ रहा हूँ दीदी जी के रूप में।
महाराज बता रहे वो आज यहाँ पे आए हैं एक जीबीसी के रूप में। कोई शंका है, कोई प्रश्न है तो आप महाराज को पूछ सकते हैं। माता जी को पूछना है, माइक दीजिए माता जी को। बोलिए, जोर से बोलिए,
माइक दे दो।
महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। महाराज जी छोटी सी बुद्धि से डाउट है, एक बच्चे ने मुझसे पूछा सदा शिव जो सुना था कि दूध और दही का अंतर है श्री कृष्ण में, तो क्लैरिफाई नहीं हो पाया। सदा शिव दूध
उनका प्रश्न है साहिब जी, कभी शिव और भगवान कृष्ण के अंदर दूध दही कितना अंतर है, तो वो थोड़ा समझाइए वो कंसेप्ट।
परम भगवान है श्री कृष्ण,
परम भगवान जो है भगवान कृष्ण है।
दूध से हम दही बना सकते हैं, दही से दूध नहीं बना सकते।
आप दूध से दही बना सकते हैं लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते। और कोई प्रश्न है? कोई संदेह प्रभु जी को दीजिए।
हरे कृष्ण महाराज जी, अल्लाह प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हम श्रील प्रभुपाद की कृपा सबसे आसानी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
प्रभुपाद जी की कृपा आसानी से कैसे प्राप्त कर सकते?
बहुत सरल,
बहुत सरल है,
बहुत सरल,
बहुत सरल,
बहुत सरल।
चैंट, रीड एंड बी हैप्पी, यानी माला कीजिए, पुस्तक पढ़िए और खुश रहिए।
बहुत अच्छा कीजिए, हरि नाम का उच्चारण सरल मार्ग है।
हरि नाम का उच्चारण सरल मार्ग,
कई गाय नाम है कृष्ण, कई गाय भगवान प्रकट होते हैं नामों के द्वारा।
कलयुग के अंदर भगवान प्रकट होते हैं उनके नामों के द्वारा।
आप सब जो इस मंदिर से जुड़े हो, हर संडे आते हैं मंदिर,
जो जो यहाँ से जुड़ा है वो हर रविवार को मंदिर आता है।
सारे संघ की आवश्यकता है मंदिर में आना चाहिए,
सभी भक्तों को मंदिर में रेगुलर आना चाहिए,
सेवा भाव,
सेवा भाव के साथ। एनी क्वेश्चन माता जी?
गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज मेरा क्वेश्चन है कि हरिनाम जप में हमारी रुचि कैसे बढ़ सकती है?
यही होना चाहिए हम सबका उद्देश्य, हरिनाम में रुचि कैसे बढ़ाए,
यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हरिनाम में रुचि कैसे बढ़ाए।
हरि
नाम में रुचि कैसे बढ़ेगी? हरि नाम का उच्चारण करने से।
उच्चारण करोगे रुचि बढ़ेगी,
आप उच्चारण करेंगे हरि नाम का तो आपकी रुचि हरि नाम में बढ़ेगी।
एनी क्वेश्चन?
और क्वेश्चन लेना है?
और क्वेश्चन महाराज ले सकते हैं, एक दो क्वेश्चन।
महाराज
प्रणाम। मेरा प्रश्न है, जैसे भागवतम में वैष्णव यथा संभु, सभी वैष्णव में से भगवान श्री कृष्ण महान वैष्णव है, तो कलि काल में भगवान शंकर भगवान शंकराचार्य का प्रकट हुए, तो हम जो विष्णु की संप्रदाय के लोग भगवान शंकराचार्य और उनके फॉलोअर्स को मायावती क्यों बोला था, उसमें वैष्णव का अपराध हो रहा है, तो ये मेरा प्रश्न है।
मुझे बताएं, शंकर जो है वो शंकराचार्य के रूप में आए, अब शंकर सबसे बड़े वैष्णव है, तो शंकराचार्य को हम मायावाद बोलेंगे तो शंकर भगवान का अपराध होगा, महान वैष्णव
है। फिर भी स्वयं भगवान में कह रहे हैं महान वैष्णव है, मंदिर का उच्चारण किया
तो श्री जी ने स्वयं प्रचेतास को मंत्र दिया था।
शिव जी
ने स्वयं भागवतम में कई श्लोकों के द्वारा प्रस्थापित किया कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, परम भगवान
कृष्ण, भगवान कृष्ण
आप सभी भक्तों का खूब खूब आभार, और सब प्रयास कीजिए कि जल्दी से जल्दी मंदिर निर्माण का कार्य संपन्न हो जाए।
थैंक यू।
हरे कृष्णा। हम लोग बड़े बड़े सौभाग्यशाली हैं, प्रफुल्ल गोपाल जी गोस्वामी महाराज ने अपने संदेश में सब कुछ संदेश दे दिया हम लोगों को, किस प्रकार से भक्ति प्रगति करें क्या आवश्यक है, किस प्रकार भक्ति में क्या बाधाएं अपराध होते हैं।